लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी ने बताया कि कई सप्ताहों में पहली बार खाद्य सहायता सामग्री गाजा सिटी में पहुंच गई है, जो लगभग 25,000 लोगों के लिए पर्याप्त होगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मंगलवार को यह भी पुकार लगाई कि इस तरह के सहायता मिशन हर दिन और बेहतर पहुंच के साथ मुहैया कराए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने रमजान महीने के पहले दिन गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम लागू किए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बंदूकों को शांत करना होगा और सभी बाधाओं को दूर करते हुए जरूरतमंद आबादी तक जल्द से जल्द आवश्यकता के अनुरूप मानवीय सहायता पहुंचानी होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने शुक्रवार को आगाह किया कि गाजा पट्टी में घनी आबादी वाले शहर रफाह में इसराइली सेना के किसी भी प्रकार के हमले से अत्याचार व अपराधों का जोखिम बढ़ने की आशंका है। गाजा में लड़ाई की वजह से सामूहिक विस्थापन के शिकार 15 लाख फिलिस्तीनियों ने फिलहाल रफाह में शरण ली हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि मौजूदा स्थिति पहले से ही विनाशकारी है और यदि आगामी दिनों में इसराइली सैन्य बलों ने दक्षिणी गाजा के सीमावर्ती शहर रफाह में सैन्य हमला किया तो नतीजे अत्यधिक भीषण होंगे।
एनी ग्राउंड असॉल्ट ऑन रफा वुड इनकर मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड वुड हाइटन द रिस्क ऑफ फर्दर एट्रोसिटी क्राइम्स।
जेरेमी लॉरेंस कह रहे थे कि रफाह में किसी भी हमले में भारी संख्या में लोगों की मौत होगी और अत्याचार व अपराधों का जोखिम और भी बढ़ जाएगा। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस युद्ध को तत्काल रोका जाना होगा और लोगों की मौतें व विनाश तुरंत रोका जाए। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस की युद्ध विराम की पुकार। उधर गाजा में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मियों ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भुखमरी के कारण अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने बताया है कि हालात बेहद विकट हैं। हर मिनट हर घंटे ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विश्व भर में महिलाओं व लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के इरादे से एक नई योजना प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2030 तक करीब 34 करोड़ लड़कियां व महिलाओं के अत्यधिक निर्धनता में जीवन गुजारने की आशंका है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लैंगिक समानता को बहुत पहले ही हासिल कर लिया जाना चाहिए था, मगर अब हमें अपनी कथनी और करनी के बीच के अंतर को दूर करना होगा। जरूरत के अनुरूप संसाधन मुहैया कराए जाने होंगे।
A global backlash against women's rights is threatening and in some cases reversing progress in developing and developed countries alike.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि विश्व के अनेक हिस्सों में महिला अधिकारों के लिए अब तक दर्ज की गई प्रगति पर खतरा है और विकसित व विकासशील देशों में उसकी दिशा पलटने का जोखिम भी है। यूएन के शीर्षतम अधिकारी की नई योजना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में लैंगिक समानता प्रयासों में तेजी लाने पर लक्षित है। इसमें यूएन के कामकाज के केंद्र में महिलाओं और लड़कियों को रखने का संकल्प व्यक्त किया गया है। मगर उन्होंने क्षोभ प्रकट किया कि यदि बदलाव की मौजूदा दर जारी रही तो महिलाओं के लिए पूर्ण समानता लाने में करीब 300 सालों का समय लगेगा। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था की प्रमुख सीमा बहोस ने इस अवसर पर ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र के मूल्य और सिद्धांत जैसी चुनौतियों का सामना आज कर रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ।
इट इज ओनली बाय इन्वेस्टिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स दैट वी विल मीट द चैलेंजेस वी फेस बी दे इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट रिलेटेड।
सीमा बहोस कह रही थी कि महिलाओं और लड़कियों में निवेश के जरिए ही हम आर्थिक हिंसक टकराव या जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपट सकते हैं। वहीं यूएन की उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने ध्यान दिलाया कि पिछले 3 दशकों में हुई प्रगति जख्म पर एक पट्टी के समान है और इसलिए लैंगिक खाई को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।
अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रिपोर्टर रिचर्ड बैनेट ने तालिबान से महिला अधिकार पैरोकारों को जेल से रिहा करने की पुकार लगाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और कामकाज पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से देश में अति गंभीर सामाजिक आर्थिक हालात उपजे हैं, जिसके स्थानीय आबादी के लिए विनाशकारी नतीजे होने की आशंका है। ज्यादा जानकारी दे रही है अंशु शर्मा।
हाल ही में अफगानिस्तान के दौरे से लौटी एशिया और प्रशांत के लिए यूएनडीपी के क्षेत्रीय ब्यूरो की निदेशक कनी विघ्न राजा ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं को बताया कि अफगानिस्तान की 69% आबादी जीवन यापन से जुड़ी असुरक्षा का सामना कर रही है, यानी उनके पास गुजर बसर के बुनियादी संसाधन तक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्वाधिक पीड़ा इस बात से पहुंची कि लगातार आती प्राकृतिक आपदाओं के कारण अफगानिस्तान के कई हिस्से विशाल स्तर पर पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे विकास के प्रयास बाधित हो रहे हैं। यूएनडीपी के अनुसार 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से अफगान अर्थव्यवस्था में 27% की गिरावट आई है, जिससे आर्थिक प्रगति रुक गई है, बेरोजगारी दुगनी हो गई है और केवल 40% आबादी तक ही बिजली पहुंच पाई है। वित्त जैसे क्षेत्र वस्तुतः ढह गए हैं और निर्यात या सार्वजनिक व्यय जैसी आर्थिक गतिविधियों के कोई बड़े स्रोत नहीं है, जिससे लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था छोटे व मध्यम उद्योगों तथा किसानों पर निर्भर हो गई है।
वर्ष 2023 ऐसे लोगों के लिए अब तक सबसे घातक साल साबित हुआ है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अन्य देशों के लिए जोखिम भरी यात्राएं करने को मजबूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के नए आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2023 के दौरान विश्व भर में प्रवासन मार्गों पर 8,565 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और यह अब तक का सर्वाधिक जानलेवा साल साबित हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार 2022 की तुलना में पिछले साल अपनी जान गंवाने वाले प्रवासियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। विश्वभर में लोग जटिल हालात से जूझते हुए सुरक्षा और शरण की तलाश में समुद्री मार्गों का रुख करते हैं, मगर सुरक्षित और कानूनी विकल्पों के अभाव में उन्हें अक्सर जोखिम भरे मार्गों से यात्रा करने और तस्करों से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रवासन मार्गों पर अपनी जान गंवाने और लापता होने वाले व्यक्तियों के मामले सबसे अधिक 2016 में सामने आए थे, जब 8,084 लोगों की मौत हुई थी, मगर अब 2023 के आंकड़े ने इसे पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल 8,500 से अधिक मौतें हुई, जिनमें 50% से अधिक डूबने की वजह से हुई। भूमध्य सागर में नाव के जरिए यात्राएं प्रवासियों के लिए सबसे घातक साबित हुईं, जहां 3,000 से अधिक लोगों की मौत होने और लापता होने की जानकारी मिली है। भूमध्य सागर प्रवासन मार्ग विश्व में सबसे खतरनाक और जानलेवा रास्तों में है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रभु तेरे चरणों में आया मैं, हे प्रभु शरण में आया।
प्रभु तेरे चरणों में आई मैं, हे प्रभु शरण में आई।
प्रभु तेरे चरणों में आया मैं, हे प्रभु शरण में आया,
प्रभु तेरे चरणों में आई मैं, हे प्रभु शरण में आई। गया था मैं दुनिया की राहों में, भटक गया था मैं दुनिया की राहों में, दुनिया की राहों में बिखर पड़ा
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने विश्वासियों को पाप स्वीकार करने का प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि ईश्वर हमारे पापों के कारण हमसे लज्जा महसूस नहीं करते, बल्कि इसके बावजूद वे हमसे प्यार करते हैं। चालीसा काल के चौथे शुक्रवार को पोप ने अपने एक संदेश में लिखा, कुछ लोग पुनर्मिलन संस्कार में जाने की शर्मिंदगी से उबर नहीं पाते। लज्जा महसूस करने का मतलब है कि आपने जो किया है उसके लिए उदास हैं। यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन शर्म को कभी भी अपने ऊपर हावी होने ना दें, क्योंकि ईश्वर हमसे शर्मिंदा नहीं है, वे हमसे हमेशा प्यार करते हैं। वैटिकन के बम्बिनो जेसू बाल चिकित्सा अस्पताल के 6 परिसरों के 3,000 से अधिक कर्मचारी, रोगी और उनके परिवार शनिवार को पोप फ्रांसिस के साथ वैटिकन को अस्पताल भेंट किए जाने की 100वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को जारी एक प्रेस बयान में बम्बिनो जेसू अस्पताल ने पत्रकारों को शनिवार 16 मार्च को पोप फ्रांसिस के साथ आगामी मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बतलाया कि यह मुलाकात सल्वियाती परिवार द्वारा अस्पताल को वैटिकन को भेंट किए जाने की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित की गई है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बम्बिनो जेसू अस्पताल बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित पहला इतालवी अस्पताल है, जो सभी के लिए पोप का अस्पताल बन गया है। प्रेस विज्ञप्ति में बतलाया गया है कि अस्पताल कई विदेशी मूल के बच्चों की भी मदद करता है, खासकर युद्ध से प्रभावित देशों से। हर साल अस्पताल द्वारा मानवीय आधार पर 300 से अधिक रोगियों का स्वागत किया जाता है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण एवं अत्यधिक विशिष्ट हस्तक्षेपों के प्रावधान के लिए 18 देशों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाओं में भी शामिल है। वैटिकन ने आध्यात्मिक सामिप्य एवं मित्रता के साथ विश्व भर के मुसलमानों को रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। वैटिकन के अंतर्धार्मिक संवाद विभाग ने रमजान के अवसर पर सभी मुस्लिम भाइयों एवं बहनों के नाम एक पत्र में लिखा, एक बार फिर हम रमजान के महीने में आपको निकटता एवं दोस्ती के संदेश के साथ शुभकामनाएं देते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा और आपके पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के लिए इस महीने के महत्व को समझते हुए, जो अपने ख्रिस्ते मित्रों एवं पड़ोसियों को भी गले लगाता है। संदेश का मुख्य बिंदु है, ख्रिस्ते और मुस्लिम युद्ध की आग बुझाओ, शांति की मोमबत्ती जलाओ।
रमजान के पौत्र अवसर पर वार्षिक संदेश को ख्रिस्तों एवं मुसलमानों के बीच अच्छे संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में लेते हुए वैटिकन ने अपनी चिंता साझा की है। पोप फ्रांसिस के अनुसार शत्रुता में यह पृथ्वी वास्तव में टुकड़ों में लड़े जा रहे तीसरे विश्व युद्ध को वास्तविक वैश्विक संघर्ष में बदल रही है। उन्होंने हथियार व्यापार के लिए खेद प्रकट किया है, किंतु वर्तमान की सकारात्मक चीजों को भी उजागर किया है और कहा है कि शांति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास अपार मानव और धार्मिक संसाधन भी हैं। अतः शांति हेतु कार्य करने का आह्वान करते हुए वैटिकन के अंतर धार्मिक संवाद विभाग ने कहा, आइए हम नफरत, हिंसा और युद्ध की आग को बुझाने में शामिल हों, शांति की कोमल मोमबत्ती जलाएं, शांति के लिए उन संसाधनों का उपयोग करें जो हमारी समृद्ध मानवीय एवं धार्मिक परंपराओं में मौजूद हैं।
संत पापा फ्रांसिस ने धर्म सभा के महासचिव कार्डिनल मारियो ग्रेज को भेजे एक पत्र में 28 अक्टूबर 2023 को धर्म सभा की 16वीं साधारण महासभा के पहले सत्र के समापन पर अनुमोदित संश्लेषण रिपोर्ट के प्रकाश में 10 विषयों का संकेत दिया, जिन पर धर्म सभा अध्ययन समूह अक्टूबर में धर्म सभा चर्चा से पहले विचार करेंगे। साथ ही वाटिकन प्रेस कार्यालय ने जनरल सचिवालय के 2 नए दस्तावेजों को चित्रित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पहले दस्तावेज का शीर्षक है, मिशन में एक धर्म सभा कलीसिया कैसे बने। दूसरे सत्र को ध्यान में रखते हुए धार्मिक रूप से गहराई से जाने के लिए 5 दृष्टिकोण, जबकि दूसरे का शीर्षक है 16वीं साधारण महासभा के पहले सत्र में उठने वाले प्रश्नों पर अध्ययन समूह धर्माध्यक्षों की धर्म सभा को रोमन कुरिया के विभाग के सहयोग से गहरा करना। संत पापा द्वारा बताए गए 10 विषय इस प्रकार हैं: पूर्वी कैथोलिक कलीसिया और लैटिन कलीसिया के बीच संबंधों के कुछ पहलू, गरीबों की पुकार सुनना, डिजिटल वातावरण में मिशन, विशिष्ट राजकीय कार्यों के संबंध में कुछ ई शास्त्रीय और विहित मामले, धर्मसभा मिशनरी परिपेक्ष में धर्माध्यक्षों समर्पित जीवन और कलीसियाई संघों के बीच संबंधों को छूने वाले दस्तावेजों का संशोधन, एक मिशनरी धर्मसभा परिपेक्ष से धर्माध्यक्ष और मंत्रालय के कुछ पहलू, मिशनरी धर्मसभा परिपेक्ष में संत पापा के प्रतिनिधियों की भूमिका, विवाद स्पष्ट सैद्धांतिक प्रेरितिक और नैतिक मुद्दों की साझा समझ के लिए धार्मिक मानदंड और धर्म सभा पद्धतियाँ और कलीसियाई प्रथाओं में विश्वव्यापी यात्रा के फल का स्वागत। संत पापा फ्रांसिस ने दोहराया कि धर्म सभा के जनरल सचिवालय का काम मेरे संकेतों के आलोक में समूहों के जनादेश को निर्दिष्ट करने के लिए कार्य की रूपरेखा तैयार करना है। संत पापा ने तब अब तक किए गए कार्यों के लिए कार्डिनल ग्रेज को धन्यवाद देते हुए इस चल रही यात्रा में उदारता पूर्वक सहयोग करने वाले सभी लोगों को उनके आशीर्वाद और सहयोग के लिए आश्वस्त करते हुए अपना पत्र समाप्त किया। और संत पापा फ्रांसिस ने नाजी जर्मनी में दोषी ठहराए गए एक पुरोहित की शहादत और सोवियत संघ में मारे गए 15 जर्मन मूल के धर्म बहनों के साथ साथ 3 सम्मानितों के चमत्कारों की मान्यता देने वाले कई आदेशों की घोषणा को अधिकृत किया। जल्द ही धन्य घोषित होने वालों में 16 शहीद भी शामिल हैं, जो नाजीवाद और सोवियत साम्यवाद के तहत विश्वास के प्रति घृणा के कारण मारे गए। इस समूह में नाजी जर्मनी में दोषी ठहराए गए एक पुरोहित और लाल सेना के सैनिकों द्वारा या सोवियत रूस के नजरबंद शिविरों में मारे गए जर्मन मूल की 15 धर्म बहनें शामिल हैं। गुरुवार को संत पापा ने संत प्रकरण के लिए गठित परिषद के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो से मुलाकात की और 25 कैथोलिक महिलाओं और पुरुषों से संबंधित आदेशों की घोषणा को अधिकृत किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।